12 जून 1975 की सुबह 10 बजे से पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट का कोर्ट रूम नंबर 24 खचाखच भर चुका था। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा पर पूरे देश की नजरें थीं, क्योंकि वो राज नारायण बनाम इंदिरा गांधी के मामले में फैसला सुनाने जा रहे थे। मामला 1971 के रायबरेली चुनावों से जुड़ा था। ये वो ही लोकसभा चुनाव था जिसमें इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को जबरदस्त कामयाबी दिलाई थी। इंदिरा खुद भी रायबरेली से चुनाव जीती थी। उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार राज नारायण को 1,11,810 वोटों के भारी अंतर से हराया था। लेकिन राज नारायण अपनी जीत को लेकर इतने आश्वस्त थे कि नतीजे घोषित होने से पहले ही उनके समर्थकों ने विजय जुलूस निकाला था। पर जब नतीजे आए तो राज नारायण के होश उड़ गए। नतीजों के बाद राज नारायण चुप नहीं बैठे। उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया, अपील की कि चूंकि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी और संसाधनों का इस्तेमाल किया है, साथ में वोट खरीदने के लिए पैसे भी दिए हैं, इसलिए उनका चुनाव निरस्त कर दिया जाए। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा इसी मुकदमे में फैसला सुनाने जा रहे थे। जस्टिस सिन्हा ठीक 10 बजे अपने चैंबर से कोर्ट रूम में आए। सभी लोग उठकर खड़े हो गए। शुरुआत में ही उन्होंने साफ कर दिया कि राज नारायण की याचिका में उठाए गए कुछ मुद्दों को उन्होंने सही पाया है। कोर्ट में बैठे सभी लोग सन्न हो गए। मतलब साफ था, इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त हो रहा था। इधर नई दिल्ली में समाचार एजेंसियों के टेलीप्रिंटर चल रहे थे। एक प्रिंटर प्रधानमंत्री के चैंबर में था। लगभग 10 बजे यूएनआई के टेलीप्रिंटर पर फ्लैश निकल रहा था, मिसेस गांधी अनसीटेड। उधर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सिन्हा अपना फैसला सुना चुके थे। राज नारायण की याचिका में जो 7 मुद्दे इंदिरा गांधी के खिलाफ गिनाए गए थे, उनमें से 5 में तो जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी को राहत दी, लेकिन 2 मुद्दों पर उन्होंने इंदिरा गांधी को दोषी करार दिया था। फैसले के तहत जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा के 123 के तहत अगले 6 सालों तक इंदिरा गांधी को लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहरा दिया गया था। राज नारायण की ओर से जिरह कर रहे थे शांति भूषण। मार्च 1975 का महीना, जस्टिस सिन्हा की अदालत में दोनों ओर से दलीलें पेश होने लगी। चुनावों के दौरान रायबरेली में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रहे राम रक्षपाल गुप्ता याद करते हैं।
एक बस सरेनी ब्लॉक की तरफ से आई, मजिस्ट्रेट होने के नाते राज नारायण जी ने मुझे इंगित करके कहा कि ये फर्जी वोटर्स हैं, और मैंने तुरंत उस बस को लालगंज थाने में ले जाकर और सबसे पहले उसके बयान लिए कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तो उसने कहा कि मैं घुमाने के लिए आया हूँ। तो मैंने कहा कि भाई कोई हिस्टोरिकल प्लेस, कोई ज्योग्राफिकल प्लेस, कोई रिलीजियस प्लेस, इस टाइप की कोई इस एरिया में हो तो तुम मुझे बताओ। तो वो चुप रहा। तो मैंने फिर उसके सारे पेपर्स लेके, जो पैसेंजर्स उसमें थे, सबको थाने में बंद कर दिया। इसमें मुश्किल से 10 मिनट लगे होंगे और राज नारायण जी खुश होकर चले गए।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस सिन्हा ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनका बयान दर्ज कराने के लिए अदालत में पेश होने का फरमान जारी किया। तारीख तय हुई 18 मार्च 1975। भारत के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी मुकदमे में प्रधानमंत्री को पेश होना था। जस्टिस सिन्हा ने भी पेशी की तैयारी की। सवाल यह था कि जज के सामने प्रधानमंत्री और बाकी लोगों का शिष्टाचार कैसा हो, क्योंकि अदालत में सिर्फ और सिर्फ जज के प्रवेश करने पर ही खड़े होने की परंपरा है, पर जब प्रधानमंत्री सामने हो तो। शांति भूषण बताते हैं कि उस दिन किस तरह से अदालत लगी थी।
जिस दिन इंदिरा गांधी आने वाली थी, उस दिन इंदिरा गांधी के कोर्ट में घुसने से पहले जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा कोर्ट में आए और उन्होंने ये अनाउंस किया कि देखिए, अदालत में लोग सिर्फ जज के लिए खड़े होते हैं, तो जब प्रधानमंत्री कोर्ट में आए तो किसी को खड़ा नहीं होना चाहिए। उस समय पासेस से एंट्री उस कोर्ट रूम में थी, 12 पासेस उन्होंने दोनों पार्टी के सीनियर एडवोकेट्स को दिए थे। खरे साहब को 12 पासेस कि तुम नॉन लॉयर्स को 12 को जिसको चाहो बुला लो पास, मुझको भी दिए थे 12। तो जब इंदिरा गांधी आई तो कोई खड़ा नहीं हुआ, लेकिन खरे साहब की ये हिम्मत नहीं पड़ी कि वो कुछ ना खड़ा हो, तो वो आधे खड़े हो गए। ये भी ना समझा जाए कि खड़े हो गए, ये भी ना समझा जाए कि नहीं खड़े हुए, तो वो सब हम उन सब ने नोटिस किया।
अदालत में इंदिरा गांधी को करीब 5 घंटे तक सवालों के जवाब देने पड़े। इंदिरा और उनके समर्थकों को अंदाजा लगने लगा था कि अदालत का फैसला उनके खिलाफ जा सकता है, तो ऐसे में जगमोहन लाल सिन्हा को प्रभावित करने की कोशिशें शुरू हुई। शांति भूषण कहते हैं,
ये तो बाद में पता लगा हमें। इंदिरा गांधी के डॉक्टर थे डॉक्टर माथुर, उनकी रिश्तेदारी थी इलाहाबाद के चीफ जस्टिस जस्टिस डीएस माथुर से। तो जगमोहन लाल सिन्हा ने उसके बहुत बाद मुझे गोल्फ कोर्स में बताया कि एक दिन जस्टिस डीएस माथुर चीफ जस्टिस अपनी पत्नी को लेके जगमोहन लाल सिन्हा के यहाँ घर पे आए जब फैसला सुरक्षित था, और इनसे ये कहा कि भाई इस केस के फैसले के बाद मुझे ऐसा पता लगा है कि तुमको सुप्रीम कोर्ट ले जाने की तैयारी है। इशारा था कि अगर तुमने उनके पक्ष में फैसला किया तो तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट जाना पक्का है। तो ये एक लालच देने की कोशिश हुई,
लेकिन जस्टिस सिन्हा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जस्टिस सिन्हा ने अपने आदेश में लिखा कि इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव में भारत सरकार के अधिकारियों और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया। जन प्रतिनिधित्व कानून में इसका इस्तेमाल भी चुनाव कार्यों के लिए करना गैर कानूनी था। इन्हीं दो मुद्दों को आधार बनाकर जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी का रायबरेली से लोकसभा के लिए हुआ चुनाव निरस्त कर दिया। न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी हाई कोर्ट जज ने किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह का कोई फैसला सुनाया हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले की खबर लगते ही प्रधानमंत्री आवास पर एक के बाद एक कांग्रेस के बड़े नेताओं का आना शुरू हो गया। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर से मैंने पूछा, कांग्रेस के खेमे में उस समय क्या चल रहा था?
अब ये जजमेंट जब आ गया तो मुझे याद है मैं जगजीव राम से मिलने गया, बाबू जगजीव राम जब वाज द नेक्स्ट, तो मैंने कहा कि बाबू जी अब क्या होगा। कहते भाई कायदे से तो उन्हें स्टेप डाउन करना चाहिए लेकिन वो करेंगे नहीं। तो मेरा मतलब मैंने कहा आप लोग कुछ करेंगे? कहते नहीं, वो किसी में हिम्मत नहीं है, यहाँ से कोई नहीं करेगा। अगर वो स्टेप डाउन करती है तो फिर आपस में झगड़ा होगा कि कौन हो सकता है। कहता मैं भी अच्छा, ये कि मिसेस गांधी टू माइंड में थी, एक तो भाई के जजमेंट है, दूसरा कि ये बुरा सा लगेगा मैं नेहरू की बेटी और एक अदालत ने कहा फिर भी नहीं कहूँगा, तो अच्छी बात है। लेकिन अब संजय को जब ये फीलिंग हुआ, उसने कहा कि इस माँ की वीकनेस जानता था, कोई रैलीज वैलीज कराओ, तो उसने आदमियों वगैरह को इकट्ठा किया। बंसीलाल हुआ करता था हरियाणा का चीफ मिनिस्टर, तो उसको कहा, उसने बसों में वहाँ से आदमी लाए और कहा कि देश की नेता इंदिरा गांधी नहीं जाने देंगे, इसे रिजाइन नहीं करने देंगे। तो उससे मिसेस गांधी को ये ख्याल हुआ कि लोग तो मुझे चाहते हैं, चाहे मैं जो अब अगर लोग मुझे चाहते हैं तो मैं क्यों नहीं रहूं।
इस बीच कानून मंत्री गोखले के पास ये सूचना आई कि जस्टिस सिन्हा ने अपने फैसले पर 20 दिन का स्टे दे दिया है सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के लिए। प्रधानमंत्री आवास का माहौल थोड़ा सुधरना शुरू हो गया। इंदिरा गांधी की ओर से मशहूर वकील नानी पालखीवाला को बुलाया गया। पालखीवाला ने सलाह दी हाई कोर्ट में ये मामला ढंग से नहीं लड़ा गया, फिर से सारे पेपर्स तैयार किए गए। आखिरकार इंदिरा गांधी की ओर से अपील सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई 22 जून 1975। ये वैकेशन जज जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर के सामने आई। इंदिरा गांधी की ओर से पालखीवाला ने बात रखी, राज नारायण की ओर से शांति भूषण अदालत में मौजूद थे। जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर ने एक टीवी साक्षात्कार में कहा कि उन पर भी इस केस को लेकर दबाव बनाने की कोशिश हुई।
Accidentally, I was the vacation judge at that time. And Gokhale, my close friend, he telephoned me.
संयोगवश मैं सुप्रीम कोर्ट में सेशन जज था। गोखले उस वक्त देश के कानून मंत्री थे, मेरे करीबी थे। उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, कृष्णा अय्यर, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जो जवाब मैंने उन्हें दिया उसकी उम्मीद उन्हें कतई नहीं थी। मैंने पूछा कि क्यों मिलना चाहते हैं। मेरे दिमाग में भी कुछ संशय था। वजह साफ थी कि वो मुझ पर दबाव बनाकर स्टे लेना चाहते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि प्रधानमंत्री का चुनाव रद्द हो गया है और वो इसके खिलाफ अपील कर स्टे लेना चाहती हैं। मैंने उन्हें जवाब दिया कि इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जाएं और अपील करें, न कि घर पर मिलें।
कृष्ण अय्यर ने पालखीवाला से कहा कि आपको जिरह करने के लिए कितना वक्त चाहिए। तीन घंटे जिरह के लिए और एक घंटे जवाब के लिए। अय्यर ने फैसला लिया अदालत इस मामले पर फैसला सुनाकर ही उठेगी, और हुआ भी यही, कोई लंच ब्रेक नहीं। शाम 5:30 बजे तक अय्यर मामले की सुनवाई पूरी कर चुके थे और उसके बाद मध्य रात्रि तक अय्यर अपने स्टेनोग्राफर को फैसला लिखाते रहे। 24 जून 1975 को जस्टिस अय्यर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर स्थगन आदेश तो दिया, लेकिन ये पूर्ण स्थगन आदेश न होकर आंशिक था। उनके फैसले के मुताबिक बतौर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकती हैं, बात भी रख सकती थी, या फिर प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी तनख्वाह या भत्ते ले सकती थी, लेकिन बतौर सांसद न तो वो संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकती थी और न ही वोट डाल सकती थी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता चालू रह सकती थी, लेकिन कुछ रोक के साथ।
कृष्णा अय्यर का जो जजमेंट था वो मेरे हिसाब से बहुत बुजदिल था। उनको चाहिए था कि या वो इंडोर्स करते उस जजमेंट को जो अलाहाबाद की, उन्हें इंडोर्स नहीं किया। उसने कहा कि यही स्टेटस को रहेगा और सिर्फ मिसेस गांधी को यही एक सजा दी कि वो वोट नहीं कर सकती पार्लियामेंट में, बाकी तो सब कुछ है। हम उन दिनों में कहा करते थे, माना जाता था बहुत इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो भी स्टैंड अप नहीं किया। अगर स्टैंड अप किया तो उसी सिन्हा ने किया और किसी ने।
जस्टिस अय्यर के इस फैसले के बाद विपक्ष ने इंदिरा गांधी पर अपने हमले और तेज कर दिए। 25 जून को दिल्ली में जयप्रकाश नारायण की रैली रामलीला मैदान में हुई। शुरुआत की दिनकर की मशहूर कविता सिंहासन खाली करो की जनता आती है।
आगे गए हैं जिसको रेडियो ने, टेलीविजन ने, कांग्रेस नेताओं ने, उनकी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने, सब लोगों ने ज्यादा सामने लाया कि जैसे उनका प्राइम मिनिस्टर रहना ये सुप्रीम कोर्ट ने उचित माना है, आवश्यक माना है कानूनन, और जिसके ऊपर उसने फैसला दिया।
जेपी रैली में बोल रहे थे और इस रैली के बाद इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी।
भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है।
और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है।